أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں السلام علیکم میں ایک بار پھر آپ کے سامنے احکام پر آدھارت بات چیت کو لے کر اپستھت ہوا ہوں ہم اپنے آج کے کاریکرم میں مبتلات نماز کے بارے میں بات چیت کریں گے یعنی ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کریں گے جو چیزیں اگر کسی کارنوش نماز میں پیدا ہو جاتی ہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے یعنی ہماری آج کی بحث کا شیرشک ہے مبتلات نماز لیکن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ ہماری شیلی رہی ہے اگر پچھلی بحث کے بارے میں کچھ مسئلے رہ گئے ہیں تو پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو ہماری پچھلی بحث میں جو ایک دو مسئلے رہ گئے تھے وہ اس سے سمبندھت تھے کہ اگر انسان نماز پڑھتے سمے نماز کی کوئی چیز بھول جائے یا چھوڑ دے تو اس کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے، اس کی نماز کا کیا ہوگا۔ تو ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اگر جو چیز اس نے نماز میں چھوڑی ہے واجبات نماز میں سے وہ جان بوجھ کر چھوڑی ہو تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر چھوڑی جانے والی چیز وہ ہے جو رکن نہیں تھی تو اگر رکن نہیں تھی تو اس کی نماز صحیح ہے اور اس کو نماز تمام کر دینا چاہیے، لیکن اگر جو چیز بھول گیا ہے وہ ایک سجدہ یا تشہد ہو تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی اور سجدے سہو کرنے ہوں گے۔ تو یہ وہ مسئلے تھے جو ہم نے یہ وہ انتم مسئلہ تھا جس کو ہم نے اپنے پچھلے کاریکرم میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اگر اسی کے بعد کا جو مسئلے آتے ہیں وہ یہ ہے، اگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے سمے تشہد کو بھول جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کے بعد، نہیں تشہد نماز پڑھ رہا تھا تشہد بھول گیا، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ جس سمے اس کی نماز سماپت ہو رہی ہے، یعنی نماز کا سلام جب پھیر دیا اس نے، تو اس کے بعد اس سے پہلے کہ نماز کی صورت بگڑے، یعنی بنا بات چیت کیے ہوئے بنا قبلے کی طرف سے چہرے کو گھمائے ہوئے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تشہد کی قضا کرے۔ اسی پرکار اگر کوئی سجدہ بھول گیا تھا تو اس کو چاہیے کہ سجدے کی قضا کرے اور اس کے بعد سجدے سہو کو انجام دے اور اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ یعنی نماز کی صورت کو بگڑنے سے پہلے یہ کار کرنا ہوگا، جیسے ہی سلام پھیرا ویسے ہی تشہد کی قضا کرے یا اگر سجدہ چھوڑا تھا تو سجدے کی قضا کرے۔ اس کے بعد جو مسئلہ یہ آتا ہے جو ہم نے کہا نماز کے ترنت بعد نماز کی صورت کو بگاڑے بنا، اب اگر کوئی انسان سجدے کی قضا کو یا تشہد کی قضا کو اس سمے انجام دے جب نماز کی صورت بگڑ چکی ہو، یعنی نماز پڑھا سلام پھیرا بجائے اس کے کہ سجدے کی قضا یا تشہد کی قضا کرتا اسے نماز کی صورت کو بگاڑ دیا، قبلے کی طرف سے منہ پھیر لیا، تو ایسے میں اس کی کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں اس کو چاہیے کہ اس کو قضا کرے، لیکن اور پھر بھی اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کے اوپر اس کی کوئی نماز پہ آپتی نہیں آئے گی، نماز کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جس ویکتی کے اوپر جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دائتو یہ ہے کہ نماز کے بعد سجدے کی قضا کرے یا نماز کے بعد تشہد کی قضا کرے، اور اسی نماز میں کوئی ایسا کارن بھی پیش آ جاتا ہے جس کے بعد اس کو دو سجدے سہو بھی کرنا ہوگا، جیسے کہ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، مثلا انسان ایک نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے سمے وہ تشہد بھول گیا یا ایک سجدہ بھول گیا، اور اسی نماز میں اس نے ایک ایسے استھان پر سلام پڑھ دیا جہاں پر سلام نہیں پڑھنا تھا، تو یہاں پر دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو تشہد یا سجدہ بھولا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے اس سلام کو جہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے تھا پڑھ دیا تھا، تو اب نماز کے انت میں اس کا دائت دو دائت ہوئے، ایک تو یہ کہ وہ تشہد یا سجدے کی قضا کرے، دوسرے یہ کہ چونکہ بے جا سلام پڑھا ہے لہٰذا اس کے لیے दो सजदे सहो करे, तो ऐसे समय पे क्या चीज़ पहले करे। तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि जैसे ही नमाज समाप्त होती है, नमाज समाप्त होने के बाद सजदे सहो करने से पहले उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ये है, उसका दायित्व ये है कि पहले तशहुद की कज़ा करे या उस सजदे की कज़ा करे, और उसके बाद अपने दोनों सजदे यानी सजदे सहो को अंजाम दे। तो ये वो मसले थे जो हमने आपके सामने उन चीज़ों के बारे में बताया जो अगर इंसान नमाज में कुछ भूल जाता है, कुछ छोड़ देता है। ये वो अंतिम बहस थी जो हम अपने पिछले कार्यक्रम में आपके सामने बयान कर रहे थे। अब आज की बहस हम यहाँ शुरू करते हैं। आज की हमारी जो बहस है वो मुबतलात नमाज के बारे में है। अगर मुबतलात नमाज का शाब्दिक अर्थ बयान किया जाए तो इस प्रकार होगा, यानी वो चीज़ें जो नमाज को तोड़ देती हैं। कुछ चीज़ें नमाज के बीच में ऐसी हैं कि अगर एक नमाजी नमाज पढ़ते समय उन चीज़ों को अंजाम दे दे तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। वो कौन सी चीज़ें हैं हम आपके सामने एक के बाद एक पहले क्रम अनुसार बयान करेंगे और उसके बाद उनके विस्तृत मसले आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो ये है कि अगर नमाज की शर्तों में से कोई एक शर्त चली जाए, दूर हो जाए, समाप्त हो जाए, अगर ऐसा होता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। दूसरी शर्त यानी दूसरी चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है या हमारी नमाज को तोड़ देती है वो ये है कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा था तो नमाज पढ़ते समय कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए उसके लिए जिसके कारणवश उसको वज़ू या गुस्ल करना हो। अगर नमाज के बीच में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो हमारी नमाज को तोड़ देती है वो है खाना या पीना, यानी अगर नमाज के बीच में आदमी खाने या पीने लगता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। उसके बाद की चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो ये है बातचीत करना। अगर नमाज के बीच में इंसान बातचीत करने लगे, जिसकी विशेष शर्तें हैं जो हम आपके सामने इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे, तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। उसके बाद की चीज़ हंसना, अगर आदमी नमाज के बीच में हंस देता है उसकी नमाज बातिल है। रोना, अगर आदमी रोता है, जिस प्रकार हंसने से नमाज बातिल होती थी उसी प्रकार रोने से भी इंसान की नमाज बातिल हो जाती है। उसके बाद की चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो है क़िबले की तरफ से चेहरे को मोड़ लेना, क्योंकि नमाज में शर्त ये है कि जिस समय इंसान नमाज पढ़ रहा है उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर क़िबले की तरफ होना चाहिए। अगर क़िबले की तरफ से इंसान नमाज पढ़ते समय चेहरे को मोड़ लेता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। उसके बाद जो चीज़ हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो है रुकन, नमाज के रुकन में से किसी रुकन को कम या ज़्यादा कर देना। जैसा कि हम अपने पिछले कार्यक्रम में भी किसी पिछले कार्यक्रम में भी इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि रुकन की कमी और ज़्यादती कैसे हमारी नमाज को बातिल कर देती है। उसके बाद जो चीज़ हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो है नमाज की सूरत का बिगड़ जाना। नमाज की एक विशेष सूरत है कि जब जिस समय इंसान नमाज पढ़ने खड़ा होता है एक विशेष तरीके से विशेष क्रम अनुसार नमाज पढ़ता है, अगर इस क्रम को, इस सूरत को तोड़ दिया जाए तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। उसके बाद की चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो है नमाज पढ़ते समय हाथों का बांधना, यानी अगर इंसान हाथ बांध कर नमाज पढ़ने लगे या नमाज के बीच में हाथ बांध ले तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। उसके बाद की चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो ये है कि अल्हम्दु का जब सूरा समाप्त होता है तो सूरा समाप्त होने के बाद आमीन कहना। जैसे कि हमने पिछले किसी कार्यक्रम में ये बात बताई थी कि ये मुस्तहब है कि जिस समय इंसान अल्हम्द का सूरा समाप्त हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे, अगर उसके स्थान पर आमीन कहता है, जैसे कि हमारे बाद सम्मानीय मुसलमान अपने बाद नमाज के बाद आमीन कहते हैं, यानी अगर इंसान आमीन कहता है तो उसकी नमाज बातिल होगी। उसके बाद की चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो है कि नमाज के बीच में कोई ऐसा शक पैदा हो जाए जो शक हमारी नमाज को बातिल कर देता है। जैसे कि अगर इंसान नमाज पढ़ रहा है और दो रकती नमाज है, मतलब सुबह की नमाज है या मगरिब की नमाज है, अगर सुबह या मगरिब की नमाज की रकतों के बारे में इंसान को शंका हो जाए तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। तो ये वो चीज़ें थीं जिसको हमने आपके सामने एक के बाद क्रम अनुसार बयान किया। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी नमाज को बातिल कर देती हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम इंशाल्लाह विस्तृत रूप से आपके सामने बयान करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने आपके सामने एक के बाद एक बयान की थी उसमें ये है कि इंसान की नमाज उस समय बातिल हो जाती है जब नमाज की शर्तों में से कोई एक शर्त समाप्त हो जाए। जैसे नमाज की शर्तों में से एक शर्त यह है कि इंसान का शरीर या इंसान का लिबास पवित्र हो। नमाज की शर्तों में से एक शर्त यह है कि जिस स्थान पर नमाज़ पढ़ रहा है वो स्थान गस्बी ना हो। तो अगर इंसान नमाज पढ़ते समय उसको नमाज़ पढ़ता नमाज के बीच में ये पता चल गया कि जिस स्थान पर वो नमाज़ पढ़ रहा है वो स्थान गस्बी है, तो उसकी नमाज़ फ़ौरन बातिल हो जाएगी और उसको दोबारा किसी दूसरे स्थान पर नमाज़ पढ़नी होगी। या नमाज़ पढ़ते समय उसको ये पता चल जाए कि उस जिस लिबास को जिस वस्त्र को उसने पहन रखा है वो वस्त्र अपवित्र है, तो उसकी नमाज़ तुरंत बातिल हो जाएगी और उसको चाहिए कि कपड़े बदलने के बाद दोबारा नमाज को पढ़े। तो ये वो चीज़ थी, एक शर्त ये थी। और नमाज की शर्तों में से एक शर्त हमने पहले आपको बयान की थी, एक शर्त ये भी थी कि जिस समय इंसान नमाज़ पढ़ रहा है उस समय इंसान तहारत के साथ हो। यानी क्या मतलब, यानी वज़ू या गुस्ल किए हुए हो, वज़ू या गुस्ल करने के बाद नमाज़ पढ़े। तो इसी शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि वो तहारत होना शर्त है। अब अगर इंसान नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज के बीच ही में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारणवश उसका वज़ू टूट जाता है, या जो उसने गुस्ल कर रखा था गुस्ल बातिल हो जाता है, या ऐसी स्थिति पेश आ जाती है जिसके उसकी तहारत बातिल हो जाती है, तो जैसे ही नमाज के बीच में उसकी तहारत बातिल होगी वैसे ही उसकी नमाज भी बातिल हो जाएगी। और उसका दायित्व ये होगा, उसकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि नमाज समाप्त करने के बाद दोबारा वज़ू या गुस्ल करे, उसके बाद नमाज को अंजाम दे। तो पहली चीज़ शर्तों का समाप्त हो जाना। उसके बाद जो चीज़ है, अगर इंसान नमाज के बीच में बोलने लगे, तो हमने जैसे आपको जब एक के बाद एक बयान कर रहे थे मुबतलात नमाज, उसमें बताया था कि बोलने से भी नमाज बातिल हो जाती है। तो उसी के संबंधित हम विस्तृत मसले आपके सामने अभी पेश कर रहे हैं। एक चीज़ जो हमारी नमाज को बातिल कर देती है वो बातचीत करना या बोलना। उसमें कुछ विशेष प्रकार के मसले हैं जो हम आपके सामने अभी बयान कर रहे हैं। अगर नमाजी नमाज पढ़ते समय जानबूझ के कुछ बोल दे तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है, चाहे जो बोल रहा है उसके कोई माना हो चाहे माना ना हो। जैसे अगर नमाज पढ़ते समय जानबूझ के किसी को बोला गया आ जा तो उसकी नमाज बातिल है, या अगर कोई ऐसी कोई चीज़ बोल दी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अगर जो शब्द बोल रहा है जानबूझ के बोला गया है तो चाहे उस शब्द का कोई अर्थ हो या ना हो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। इसके बाद जो चीज़ आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नमाज पढ़ते समय इंसान को खांसी आने लगती है, इंसान को छींक आने लगती है, या शरीर में दर्द है, आ ऊ की आवाज़ें आती हैं, तो इसके बारे में क्या मसला है? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं खांसी आने से, छींक आने से, या बेअख्तियार आह वगैरह की आवाज़ निकल जाने से इंसान की नमाज़ बातिल नहीं होती है। लेकिन इंसान को चाहिए कि ओ आह इस प्रकार के शब्दों को निकालने से परहेज़ करे और इस प्रकार के शब्द ना निकाले। अगर जानबूझ के ऐसे शब्द निकाल रहा है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी। उसके बाद जो चीज़ आती है कि इंसान जिस समय नमाज़ पढ़ रहा है, जैसे कि हम ये सलाम के बारे में बहस है कि इस्लाम ने इसके ऊपर बहुत ताकीद की है कि एक जब मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो सलाम करे, और सलाम करने को स्वयं मुस्तहब बताया है लेकिन सलाम के जवाब देने को वाजिब किया है। इस सलाम की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि नमाज के बारे में भी उसने मसले बयान किए हैं कि अगर कोई इंसान नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते पढ़ते कोई दूसरा मुसलमान आता है और उसको सलाम करता है तो इसके बारे में क्या मसला है। तो पहले तो हम आम जीवन में हमारे आम ज़िंदगी में हमारी नमाज का सलाम का जवाब देना वाजिब था, यहाँ पर क्या? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं जिस प्रकार आम जीवन में सलाम का जवाब देना वाजिब है वैसे ही अगर इंसान नमाज पढ़ रहा है और कोई दूसरा आके उसको सलाम करता है तो उसको जवाब देना वाजिब है। लेकिन जवाब देने का तरीक़ा थोड़ा सा बदला होगा। जवाब देने का तरीक़ा ये होगा कि सलाम शब्द को पहले रखे, यानी अगर सलाम अलैकुम कहा है तो सलाम अलैकुम सलाम अलैक इस प्रकार के शब्दों को बयान करे। यहाँ पर हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं कि सलाम जब कोई जिसने किया है तो उसका जवाब वैसा ही देना चाहिए जैसा सलाम किया गया है। यानी क्या मतलब, यानी अगर उसने कहा सलामुन अलैकुम तो जवाब दे सलामुन अलैकुम, यानी नमाज पढ़ते पढ़ते जवाब दे रहा है तो कहे सलामुन अलैकुम। अगर कहा गया अस्सलामुन अलैकुम तो कहे अस्सलामुन अलैकुम। इस प्रकार जैसा सलाम किया गया वैसा ही जवाब दिया जाए। यानी ऐसा नहीं कि किसी ने कहा सलाम अलैकुम तो आप जवाब में कहें सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तो ये ऐसा नहीं कह सकते। ये सलाम से संबंधित मसले थे। इसके बाद बातचीत से संबंधित कुछ और मसले हैं जिसको हम आपके सामने और अपने आगे आने वाले प्रोग्राम में बयान करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर समय इस प्रोग्राम का यहीं पर समाप्त होता है। इंशाल्लाह हम अपने अगले कार्यक्रम में इन मसलों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।